ओम शांति। आज लौकिक रहेगा क्या पसंद है? कर्म योग के बिना कर्मातीत नहीं हो सकते, ये बहुत पुराने बाबा के महावाक्य हैं। और कर्मेंद्रिय जीत बने बिना कर्म योगी नहीं बन सकते। हर मनुष्य निरंतर कर्म कर रहा है, उसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है। जिन मनुष्यों के साथ वो रह रहा है उनका प्रभाव पड़ता है, जिनसे संबंधित है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ एक सूक्ष्म चीज है जिस पर हमें ध्यान देना है, कर्म करने के पीछे हमारे मन में भावनाएं क्या हैं, उसका भी बहुत प्रभाव कर्म पर और हमारी स्थिति पर पड़ता है। अब हमें कर्म योगी बनना है। बैठकर तो कोई सदा योग कर भी नहीं सकेंगे, हमें कर्म योगी बनना है। कर्म करता है मनुष्य, कुछ कर्म उसके ऐसे कर्म है जिसको वो कर्म कहता है और कुछ कर्म ऐसे कर्म है जिसके बारे में उसे आभास नहीं रहता कि ये भी कर्म है, कौन से कर्म है। वो देखना, निरंतर देख रहे हैं ना, क्या देखते हैं, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। जो कुछ आंखें देखती हैं उसका प्रभाव सीधा मनुष्य के मन पर आता है। हम बोलते हैं, हम उसको कर्म तो कभी समझ नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं सारा दिन कामकाज में भी, लेकिन उसके अलावा भी कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते ही रहते हैं। निरंतर कर्म में व्यस्त है मनुष्य। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हम विशेष रूप से कर्म कह रहे हैं। कोई ऑफिस में जाते हैं, भाई हम 10 से 6 ऑफिस में जाते हैं, ये हमारा विशेष कर्म है। घर में माताएं बहने खाना बना रही हैं, सफाई करना है, कपड़े धोना है, वो विशेष कर्म हो रहा है। बच्चों की पालना करनी है, पढ़ा रहे हैं, भेज रहे हैं तैयार होकर, वो विशेष कर्म हो रहा है। अब हमें जब कर्म योगी बनना है, कर्म योगी का सीधा सा अर्थ हुआ, ये अर्थ दुनिया वाले नहीं करते, कर्म करते हुए योगी युक्त रहना। कर्म योगी लोगों ने उनको कह दिया जो बड़े कर्मठ रहे दुनिया में, जिन्होंने समाज या देश के लिए कर्म किए, ये बड़ा कर्मठ है, ये कर्म योगी व्यक्ति है। और योग के लिए समझ लिया कि वो तो कुटिया में बैठकर एकांत में जाकर काम धंधा छोड़कर उसकी साधना की जा सकती है। परंतु बाबा ने हम सबको कर्म में योग हो, हमारे कर्म योगयुक्त हो जाए, ताकि हमारा जीवन योगयुक्त हो जाए, इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। सभी को अपने अपने कर्म क्षेत्र पर कुछ ना कुछ अनुभव है अवश्य। कर्म करते मनुष्य योगयुक्त नहीं रह पाता, सबके ये अनुभव हैं। कई तरह की कॉन्शियसनेस होती हैं। एक है कर्म कॉन्शियसनेस, एक्शन कॉन्शियसनेस। कर्म कर रहे हैं उसका ही संपूर्ण प्रभाव मनुष्य पर रहता है। लेकिन एक दूसरी कॉन्शियसनेस भी होती है जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है, टाइम कॉन्शियसनेस। जल्दी करना है, इस समय से पहले करना है, स्टेशन पर जाना है, 10 बजे पहुंचना है, उतने ही समय में पहुंचेंगे हम, आधे घंटे में पहुंचेंगे या 15 मिनट में। एक संकल्प मन को प्रभावित करता रहता है, देर न हो जाए। क्लास में आना है भाई, सवेरे 7 बजे मुरली शुरू होगी, हम 7:45 पहुंच जाएं, 6:30 पहुंच जाएं, घर से जब चलेंगे तो ये रहेगा जल्दी पहुंचे, पहुंचेंगे हम उतने देर में। पैदल आना है 10 मिनट लगेंगे, उस 10 मिनट का हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं लेकिन टाइम कॉन्शियस होने के कारण माताओं ने समझ लिया टाइम कॉन्शियस किसे कहते हैं, टाइम कॉन्शियसनेस है, जल्दी करना है। हाँ हरी भी होती है, जल्दी जल्दी भी होती है, लेकिन एक टाइम पर काम, टाइम पर काम ठीक वाली चीज है, लेकिन टाइम यदि मन में टेंशन पैदा कर दे तो वो समय पर काम करना बड़ा भारी पड़ता है, तनाव पैदा करता है। कई लोग जीवन में टाइम कॉन्शियसनेस के कारण समय पे सब कुछ करना है बड़े तनाव में रहते हैं, देर हो गई। बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों में चलते हैं, सिग्नल साथ में चौराहों पर लाल लाइट जल गई और वहाँ एक दो तीन मिनट खड़ा होना पड़ रहा है तो टेंशन हो रही है, जबकि उस दो तीन मिनट को हम यूज भी कर सकते हैं बहुत अच्छे काम में, हम सकास दे सकते हैं, हम कुछ अच्छा चिंतन कर सकते हैं। तीसरा प्रभाव पड़ता है किस वातावरण में हम काम कर रहे हैं और हमारे साथी कैसे हैं, ये चौथा प्रभाव। मान लो हम कार्य कर रहे हैं दो लोगों के साथ और वो हमें कुछ उल्टा सुलटा बोल रहे हैं, या हमें नहीं बोल रहे, वो खुद ही ज्यादा बोल रहे हैं, उनका काम करने का तरीका शांत में नहीं है, उतावलेपन का है, जल्दीबाजी का है, तो उसका प्रभाव भी हमारे मन की स्थिति पर पड़ता है। अब हम इन सभी से जरा ऊपर उठने का विचार करेंगे। एक बात जो मैंने आपको कही, कर्म हम किस भावना से कर रहे हैं, इसका प्रभाव टोटल हमारे कर्म पर, हमारे कर्म के फल पर, हमारी मनोस्थिति पर सीधा सीधा पड़ रहा है। क्योंकि आजकल लोग कुछ भी काम करते हैं पहले मन में कौन सी भावना होती है, क्या कामना होती है, धन की प्राप्ति। अरे नेचुरल चीज है, धन के लिए मनुष्य काम कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा किसी को मान चान की प्राप्ति, मान चान की इच्छा, किसी को कंपटीशन की भावना से परेशानियां, उसने अच्छा काम कर दिया उसका ज्यादा नाम होगा, मेरा उससे ज्यादा हो, ईर्ष्या की भावना का प्रभाव रहता है मन पर। तो हम कर्म किस लिए कर रहे हैं, प्राचीन काल में ये बात बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, राजा लोग जब यज्ञ करते थे, युधिष्ठिर ने राजसूय अश्वमेध यज्ञ किया, उसकी भावनाएं कुछ और थी, दुर्योधन भी वही यज्ञ करना चाहता था, उसके मन की भावनाएं कुछ और थी, आपने से बहुत नहीं सुना है, उसके मन की भावना थी मेरा नाम युधिष्ठिर से ज्यादा हो जाए, लोग मुझे भी चक्रवर्ती सम्राट मान लें, जबकि उसको ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, ऋषियों ने बताया कि तुम इस यज्ञ के करने के लायक नहीं हो, क्योंकि इस यज्ञ को केवल धर्मात्मा ही कर सकते हैं। कर्म करने के पीछे हमारे मन में क्या भावनाएं हैं, हम निष्काम हैं या कामना युक्त हैं? है गीता में बहुत सुंदर सब्जेक्ट है ये लंबा चौड़ा, निष्काम कर्म योग, इसको लोगों ने ठीक से समझा नहीं। कर्म योगी बनना है तो निष्काम होना पड़ेगा, कर्म में हम योग युक्त रहे, कर्म में हमारा मन और बुद्धि सर्वशक्तिवान से लगा रहे, कर्म के प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें निष्काम होना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी कामनाएं कर्म के साथ हमारे मन में होंगी उतने ही संकल्प ज्यादा चलेंगे, उतने ही व्यवधान ज्यादा आएंगे, और यदि मनुष्य निष्काम हो जाए, समझते है ना श्री माता निष्काम का, श्रेष्ठ कामनाओं के सहित, निष्काम का सीधा अर्थ हुआ कोई कामना नहीं, लेकिन बिना किसी कामना के तो मनुष्य कुछ करेगा भी नहीं, लेकिन कल्याण की कामना हो, सीधा स्वार्थ ले लें, स्वार्थ की कामना न हो, कल्याण की कामना हो। हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, हमारे मन में ये कामना भी हो सकती है इससे बहुत कमाई हो जाए, सरकार से बहुत पैसा मिलता है, हम इतनी फीस रख दें इससे बहुत कमाई हो जाए, हमारा नाम भी हो जाए, आने वाली पीढ़ियों में हमारा नाम रहे कि हमारे इस पूर्वज ने बहुत अच्छा बड़ा हॉस्पिटल बनवाया था। साथ में ये भी थोड़ी बहुत कामना रहे कि इससे रोगी लोग ठीक हो जाएंगे, दुआएं भी देंगे। साथ में ये भी है कि दुआएं मिले, रोगी ठीक हो जाएं तो ठीक हो जाएं तो हमारा पुण्य कर्म भी जमा हो। हालांकि ये कामना बड़ी सुंदर कामनाएं हैं, रोगी ठीक हो हमारा पुण्य बने, सेकंड नंबर की कामना। और सर्वश्रेष्ठ स्थिति ये है कि हम जस्ट विश्व कल्याण की भावना से, मनुष्यों को सुख देने की कामना से एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए, मार्बल में कटवा के भी नहीं लगवाएंगे कि इसमें ये हॉस्पिटल बनवाया था, उसकी भी आवश्यकता नहीं। हम अखबारों में भी नहीं डलवाएंगे कि भाई हमने इतना डोनेट किया इस हॉस्पिटल को बनवाने में। ये निष्काम भावना है। ये हमने बड़ा उदाहरण दिया, हम छोटे छोटे उदाहरण ले ले। माताएं घर में भोजन बना रही हैं, सोच लो क्या इच्छा होती है भोजन के पीछे। एक वो स्थिति है कि कोई इच्छा नहीं है, रोज भोजन बनाना है, कोई तो परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं, सबको खिलाना है। लेकिन एक इच्छा ये भी हो सकती है भोजन बहुत टेस्टी बने, सब मेरी वाह वाह करें, मेहमान आए हैं अरे वाह ऐसा भोजन तो आज तक खाया ही नहीं था। और सूक्ष्म रूप से देखें, मनुष्य के मन में एक सूक्ष्म फीलिंग होती है, मेरे परिवार के लिए भोजन, बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बना रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ भावना कौन सी होगी, किसके लिए बना रहे हैं, बाबा के लिए बना रहे हैं, उसके भंडारे से बना रहे हैं, उसके बच्चों के लिए बना रहे हैं। खाएंगे तो वही, न बाबा खाएगा और न वो भोजन किसी तरह से और किसी के काम आएगा। बाबा को केवल हम स्वीकार कराएंगे और हमारा परिवार ही खाएगा। लेकिन इस भावना का बहुत बड़ा इफेक्ट भोजन पर दिखाई देगा कि बाबा के यज्ञ से भोजन बन रहा है, हम बाबा के लिए बना रहे हैं, इस भोजन को बाबा के सभी बच्चे खाएंगे, उनका कल्याण होगा। हम अपनी भावनाओं को चेक करें। भाई लोग ध्यान दें, आप सारा दिन कार्य कर रहे हैं, कमाने के लिए काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, नेचुरल बात है वो मिलेगा ही, कर्म इसलिए आप कर रहे हैं तो उस पैसे से आपके परिवार की पालना होगी। यदि आप अपनी इस भावना को चेंज कर दें, हम कर्म कर रहे हैं परमात्म अर्थ, ये परिवार मेरा नहीं किसका है, बोलो भाई बोले जरा मुख से, किसका है, सचमुच बाबा का है या यहाँ बैठ कर कह रहे हैं, बाबा का है ये परिवार, हम बाबा के लिए कर्म कर रहे हैं, वो इन सब की पालना कर रहा है। जरा इस भावना को बहुत अच्छी तरह से डीपली अपने अंदर ले आए, फिर देखिए आपको कर्मों का कैसा आनंद आएगा। कर्म आपको प्रभावित नहीं करेंगे और आपके परिवार की पालना कितनी अच्छी होती रहेगी, क्योंकि केवल धन से ही पालना नहीं होती। भाई लोग जो पढ़े लिखे हैं समझदार हैं, माताएं भी समझदार हैं, ध्यान दें, केवल धन से ही परिवार की पालना नहीं होती, धन तो बिगाड़ता भी है। माताओं को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना आजकल डाले नहीं जा रहे हैं। भाइयों को भी अपने संस्कारों का सुंदर प्रभाव परिवार पर डालना, इस पालना की बहुत आवश्यकता है। धन की पालना से यदि परिवार अच्छे होते तो बहुत धनवान है दुनिया में लोग, भारत में बहुत है। हम उन धनवानों की बात नहीं करते जिनके पास अरबों की संपत्ति है, उनकी जिनके पास भी ठीक ठीक धन है, जो अपने परिवार की ठीक ठीक पालना कर रहे हैं, लेकिन यही धन और यही पालना परिवारों में कितना तनाव भी पैदा कर रही है ना। मैं आप सभी को इस टॉपिक में ही ये भी ध्यान दिला देना चाहूंगा, अंडरलाइन करें, आने वाले लगभग 5 सालों में ये दिखाई दे रहा है कि हर मनुष्य के पास धर्मराज की सजाओं का एक स्वरूप रहेगा, संबंधों में कड़वेपन की सजाएं। ये सजाएं स्थूल नहीं है, से सजाए, कंप्लीटली मन सीखें। ये बढ़ता जा रहा है परिवार परिवार में अपनों से गलत व्यवहार, अपनों से गलत रेस्पॉन्स, अपने लोगों से कड़वाहट, अपने लोगों से टकराव, जिनसे हम बहुत प्यार रखते हैं, जिनके लिए रुकते हैं और करना चाहते हैं, जिनके लिए मनुष्य अपना सारा समय दे रहा है, उनसे गलत व्यवहार, उनसे सुनने पड़े गलत बोल, उनसे सुनने पड़े इंसल्टिंग बोल, कैसा लगेगा एक बाप को? आप समझते हैं ना, बाप बैठे हैं बहुत सारे, समझते हैं ना कैसा लगेगा। ये सजाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये सजाएं उनके लिए होंगी जिन्होंने जीवन में कामना युक्त होकर बच्चों के लिए कार्य किया है, जिन्होंने निष्काम भाव से उनकी पालना की होगी, जिन्होंने इस भावना से उनकी पालना की होगी कि बाबा के हैं सब, बाबा के यज्ञ से सबकी पालना हो रही है, हमारा सब कुछ बाबा का है, उनको दूसरों के दुर्व्यवहार का गलत इफेक्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ हमने पीछे बहुत समय तक एक प्रोजेक्ट जैसा चलाया अपने यहाँ, आप भी सुन लें उसको, उस प्रोजेक्ट को नाम दिया नो इफेक्ट। हमारे मन पर किसी भी चीज का बुरा इफेक्ट ना हो, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम अपने को ऐसा शक्तिशाली बनाएं, हम अपने को ऐसा सरल चित्त बनाएं, हम ऐसा निष्काम भाव अपने अंदर जागृत करें ताकि दूसरों की हर बात हमें चिंच न करे। कई लोगों ने अपने को ऐसा सेंसिटिव बना लिया है, नाजुक बना लिया है, दूसरे ने जरा सा कुछ कहा बहुत चिंच किया, बहुत फीलिंग आ गई, खुशी नष्ट हो गई, निगेटिव चिंतन चलने लगा, ब्रेन पर इफेक्ट होने लगा। चीजों को हमें साक्षी होकर देखना ही है, चीजों को हमें देखते हुए भी नहीं देखना होगा, अभी से सब आदत डालें, विनाश काल की तैयारी है। कुछ चीजों को देखते हुए नहीं देखना होगा, कुछ चीजों को साक्षी होकर इस दृष्टि से देखना होगा कि ये इनका अपना पार्ट है, ये मेरे बच्चे हैं, इस मेरेपन से ऊपर निकलना ही पड़ेगा, ये आत्माएं हैं और ये इनका अपना पार्ट, इनका अपना भाग्य है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम नो इफेक्ट पर ध्यान दें, नो इफेक्ट, परफेक्ट माना नो इफेक्ट, ध्यान देंगे सभी बाबा की महावाक पर। बहुत पहले ये मुरलियां चला करती थी। संपूर्ण का अर्थ है कोई भी बुरा प्रभाव मन पर ना आए। तो हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, निरंतर हम कर्म में रत रहते हैं, हम अब अपने कर्म करने की कला को थोड़ा सा बदलेंगे। सभी ध्यान दें, हम कर्म शुरू करते हैं और यदि हम ये सोच के करते हैं कि मुझे बाबा की याद में रह के कर्म करना, तो तुरंत ही कौन सी चीज हमें बुला देती है, जल्दी, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं ना सब कुछ। ये तो सबके लिए संभव नहीं है कि कोई निरंतर बाबा के स्वरूप पर स्थित रहते हुए कर्म किया जाए, इसके लिए तो चाहिए बहुत बड़ा अभ्यास। ये वही कर सकते हैं जिन्होंने योग के बारे में बहुत अच्छी साधनाएं की हों, कि बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर रहे और नीचे हाथ काम करते रहे। अच्छी साधना की जरूरत है बीच बीच में, अभ्यास करेंगे सभी, बुद्धि बाबा पर, हाथ कर्म में। साथ साथ ये प्रैक्टिस भी बहुत आवश्यक है कि मैं आत्मा इस देह के द्वारा, इन हाथों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, ये बहुत सहज अभ्यास है। सभी इस पर ध्यान देंगे, इस पर और प्रैक्टिस की जाए। कई भोजन बनाती हैं, ध्यान दें, शुरुआत करें इस चीज के, मैं आत्मा हाथों के द्वारा भोजन बना रही हूँ। इससे आप देखेंगे कर्म का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। दूसरे संकल्प को एक चेंज करें, अपने विचारों में एक चेंज लाएं कि मुझे हर कर्म का आनंद लेना है, करना है कि हर कर्म आनंद दे, कर्म थकाए नहीं। संकल्प मनुष्य को थकाते हैं ना, कर्म नहीं थकाता है, क्या थकाते हैं? संकल्प। हमको थके हुए तक फिर काम करना पड़ेगा, बस काम से पहले ही थक जाएंगे। लेकिन यदि हमें अपनी ऐसी नेचर बना दे कि हमें हर कर्म को एंजॉय करना है, आनंद पूर्वक कर्म शुरू करके हर कर्म का आनंद लेना है, हर कर्म हमारे लिए आनंद बन जाए। कर्म को हमें रोज करने हैं ना, जो मनुष्य कर्म नहीं करेगा वो योगी बन सकेगा? उसके लिए तो बिल्कुल कठिन, क्योंकि जो जितना फ्री रहेगा उसका मन उतना ही फ्रीली भागेगा, व्यर्थ में भागेगा। जो जितना कर्म में व्यस्त है वो उतना ही अच्छा योगी बन सकता है, क्योंकि मन कर्म में है, उससे बाहर नहीं है। बुद्धि को बाबा में लगाना अति सरल होगा। कई लोग ऐसा अनुभव सुनाते हैं, आप में से भी बहुतों का हो सकता है वो, जिस दिन हम सवेरे बहुत पावरफुल योग कर लेते हैं उस दिन 8 बजे के बाद बिल्कुल अलबेलापन रहता है दिनचर्या में, और जिस दिन सवेरे अच्छा योग नहीं रहता उस दिन 8 बजे के बाद हम बहुत चुस्त रहते हैं कि आज योग अच्छा नहीं हुआ, कमाई नहीं हुई, अब सारा दिन कमाई करनी है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। सवेरे बहुत अच्छा योग हो गया, आत्मा तृप्त हो गई, तो ये तृप्ति कभी कभी अलबेलेपन में बदल गई। सवेरे अच्छा योग नहीं हुआ तो चुस्त रहे। जैसे कोई आज मुझे कह रहा था कि देश की एक टीचर बहन मिल रही थी कि हमारे देश में छोटा सा देश है, इतनी शांति है, सभी अलबेले हो गए हैं ब्राह्मण, थोड़ा सा झगड़ा चलता रहता है देश में तो सब चुस्त रहते हैं कि सबको सपाश देनी है, योग करना है, पता नहीं जल्दी विनाश हो जाएगा। तो कभी कभी विघन समस्याएं मनुष्य को चुस्त बना देती हैं। हमें ठंडा नहीं होना है। ध्यान दें पिछले सीजन की एक बहुत सुंदर बात पर जो कर्म योग से जुड़ी है, श्रेष्ठ स्मृति से कर्म आरंभ करना और साधारण स्मृति से कर्म आरंभ करना, दोनों में महान अंतर है। इसलिए हम इस प्रैक्टिस को अपना संस्कार बनाएं, अपनी नेचर बनाएं कि जब हम एक काम शुरू कर रहे हैं तो हम कोई सुंदर स्मृति से कर्म प्रारंभ करें। और सभी आज से ही अपनी दिनचर्या के कर्मों को जरा बांटने कुछ हिस्सों में, 8-10 तरह के कर्म यदि हम करते हों तो अलग अलग कर्म में अलग अलग स्मृति से प्रारंभ करें। बहुत सरल तरीका है ये। भोजन बना रहे हैं ये अभ्यास कर ले। माताओं को मैं पूछता हूँ कौन कौन रोटी में किस सेवा में है, हाथ उठाओ जरा। बहुत माताएं हैं। देखो एक अभ्यास कल से आप सब चालू कर देंगे, भूलेंगे नहीं, एक दूसरे को याद दिलाएंगे। एक रोटी बेलने में 2 बार संकल्प करना है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। माताओं को बहुत सिखाया मैंने ताकि आपको यही आदत पड़ जाए और घर में जाकर हर एक रोटी बेलने में 2 बार अभ्यास हो जाए। कर सकते हैं? करेंगे ही। जो सब्जी काटने में है माताएं हाथ उठाएं। ठीक है, अब सब्जी काटते हुए भी ये नहीं कि बस ये काटना इधर करना, छोटा काटना बड़ा काटना इसमें बिजी हो जाए। सब्जी काटते हुए 2 अभ्यास करेंगे सभी। आप ये ना सोचना रोटी वालों को एक बताया और सब्जी वालों को 2, आप भी कर सकते हैं। पहला अभ्यास यही, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि रोटी बेलने में हर रोटी में परिवर्तन होना है, सब्जी काटने में वो मनोस्थिति नहीं है। दूसरा बीच बीच में अभ्यास करेंगे, बाबा का बहुत शीतल फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है, बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको, थोड़ा थोड़ा भी बीच बीच में। अगर आपको सवेरे दो घंटे काटनी है, क्लास के बाद दो घंटे, शाम को तीन घंटे, तो आप बीच बीच में ये अभ्यास करें। बाबा का एक बहुत शीतल फाउंटेन किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। भाई लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ अच्छी अच्छी स्मृतियों के साथ निकलेंगे। भाई दूंगा कि आप तुरंत जल्दी जल्दी नाश्ता करके और टिफिन दे के काम करना जाएं, तीन मिनट बैठेंगे कम से कम, और उसमें केवल योग नहीं, अच्छी स्मृति। क्या स्मृति? मैं अब श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने कर्म क्षेत्र पर जा रहा हूँ, बाबा मेरे साथ रहेगा हजार भुजाओं सहित। संकल्प कर लें, सीजन बना लें, सीन देख लें, हजार भुजाओं सहित सर्व शक्तिमान मेरे साथ चलेगा। मैं सारा दिन बाबा के लिए कर्म करूंगा, मेरे कर्म बाबा के लिए। बहुत सुंदर संकल्प है ये, मेरा हर कर्म बाबा के लिए होगा। रोज संकल्प देंगे अपने को, आज का मेरा हर कर्म प्रभु प्रति, और श्याम को वापस करेंगे सब तुझको अर्पित। आज जो कर्म किया वो सब तेरे हवाले। इस स्मृति के साथ घर से बाहर निकलेंगे। आपके पास जाने के लिए बाइक है, किसके पास कार होगी, कोई साइकिल से चलते होंगे। जैसे ही आप अपने वाहन का प्रयोग करना प्रारंभ करें, ये भूले नहीं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान और विघन विनाशक हूँ। ये दो स्मृतियाँ बहुत सुंदर हैं, जो हमें आने वाले समय में बहुत काम आएंगी, बहुत बहुत। इसको हम अपनी नेचर बना लेंगे। ऑफिस में जब आप जा बैठे, एक स्मृति से काम प्रारंभ करें, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, अब आंखों से देख रही हूँ। एक ही प्रैक्टिस कर लें, आंखों से देख रही हूँ। थोड़ी देर की प्रैक्टिस आपके कर्मों पर अलौकिक छाप छोड़ेगी। बीच में जब आप थोड़ा सा थक जाएं, काम कर लिया आपने दो घंटा, तो आप रिलैक्स होना चाहते हैं, तो जैसे मनुष्य सोचता है भाई थक गए, थोड़ा लेट लें, विश्राम कर लें, आप सोचेंगे अब थक गए हैं, चलें अपने घर शांति धाम एक मिनट के लिए विश्राम की स्थिति में। बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। ऐसे भिन्न भिन्न कर्म में भिन्न भिन्न स्मृति, आपका कार्य पूरा हो जाए, आप घर वापस चल रहे हैं, संकल्प करो आज का ये ऑफिस का ड्रामा पूरा हुआ, ऑफिस का कोई इफेक्ट मुझे अपने घर नहीं ले जाना है, अब मैं अपने लौकिक घर में जो बाबा का घर है, बाबा का यज्ञ है, वापस जा रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ। इस स्मृति के साथ घर लौटे, आपको अनुभव होगा कि ऑफिस के आठ सात घंटों का कोई फैक्ट आप घर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि ये हो रहा है ऑफिस का इफेक्ट घर पर, घर का इफेक्ट ऑफिस में हमारे साथ चलता है और हमारी अलौकिकता को नष्ट कर देता है। लड़ाई हुई होगी ऑफिस में किसी से, गुस्सा उतरेगा घर में आकर बच्चों पर, होता है भाइयों के साथ ऐसा है नहीं होता है, नहीं लोकअप कराए इन सब चीजों को। आप स्नान कर रहे हैं, संकल्प करें ये देह मेरा मंदिर है। भोजन खा रहे हैं, संकल्प करें ये कार है, इसमें जरा फ्यूल भर रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं, इसको भोजन दे रहे हैं। ऐसी अलग अलग स्मृति अलग अलग कर्म में निश्चित कर रहे, सोते हुए कभी नहीं भूलना है मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित। अगर संकल्पों से अर्पित नहीं होते तो लिख कर अर्पित करेंगे, अंतर देखेंगे आप, आपके मन को कोई चीज बोझिल कर रही है, उसको बाबा के नाम एक पत्र के रूप में लिख दो, बाबा को पहुंच गया वो, उसे खत्म कर दो। सवेरे आप उठेंगे मन बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बोझ से मुक्त दिखाई देगा। साथ साथ सारा दिन कर्म क्षेत्र पर रहते हुए वातावरण का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, तो किसी एक दो स्वमान को साथ लेकर ही चले सदा। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। माताएं अनुभव कर सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं। घर में कुछ काम करने जा रही हैं, आप इस स्मृति के साथ घर से चलो, मैं इष्ट देवी हूँ। आपकी वाइब्रेशन सेल पर रहेंगे, सकास मिलती रहेगी आत्माओं को। ये बहुत अच्छी स्मृति है। ऐसी स्मृतियों के साथ कर्म प्रारंभ किया जाए। जो बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं कर्मयोग का, वो इस अभ्यास के ध्यान दें। बाबा की किरणें पड़ रही हैं, सबसे अच्छा पावरफुल अभ्यास है ये। बाबा का एक सुखद फाउंटेन पड़ रहा है हमारे ऊपर। एक बहुत अच्छा संकल्प जिस मुरली से हम सीखते हैं, जो अभी चली बाबा की, आप किसी के दिन उसको करके देखो जरा। एक दिन पूरा दो उसमें, और रोज तो उसको एक नेचुरल रूप देना ही है। आप सभी ने देखा बाबा ने मुरली चलाते कितने प्यार भरे शब्द बोले हम सब के लिए। राज दुलारे, लाडले, राजे बच्चे, कितने अच्छे अच्छे शब्द थे। ये बनावटी शब्द थोड़े थे, रियल भगवान प्यार कर रहा था। लाडले बच्चों, बहुत अच्छे शब्द थे, अपनी वृत्ति को कल्याणकारी बनाओ। लाडले बच्चों, बाप तो तुम्हें विश्व की स्टेज पर हीरो एक्टर बनाना चाहता है। अब बाबा के चेहरे को देख लिया करो ये सुनते हुए। तो आप जरा याद करके देखिए, एक दिन, मैं एक दिन एक्सपेरिमेंट के लिए कह रहा हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, इस संकल्प का ही शक्ति है। ये संकल्प नहीं कि बाबा मुझे प्यार नहीं करता। अब मेरे से तो ये गलती हो गई आज, बाबा मुझे प्यार नहीं करता, ऊपर आंख दिखा रहा होगा। बाबा किसी को आंख नहीं दिखाता, बाबा तो दृष्टि देता है ना, उसकी दृष्टि में आंख दिखाना थोड़ा ही होता है, उसकी दृष्टि में तो संपूर्ण प्यार झलकता है ना। वो तो प्यार देने आया है, उसको पता है किसी के पाप या पुण्य, वो तो उन आत्माओं का अपना अपना खेल है। आप कष्ट दे रहे हैं, पुण्य आत्मा को सुख दे रहे हैं, पुण्य कर्म। बाबा तो राह दिखा रहा है ना हमें, तो एक दिन उससे ही आप संकल्प करो, कल ही करना, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, प्यार का सागर भगवान मुझे बहुत प्यार करता है। दिन में 10 बार सोच के देखना, दिल्ली में जब तक आओ तब तक इस बात को कई बार याद कर लेना, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। फिर शाम को करना, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। करता है या नहीं, या झूठा मोटा संकल्प होगा, मन को खुश करने वाला तो नहीं ना। प्यार करता है बाबा बहुत, आपको उसके प्यार की बहुत अच्छी फीलिंग होने लगेगी। और ये प्यार किसका प्यार है सोचो, जिसके बारे में कभी हमने कल्पनाएं भी नहीं की थी कि भगवान हमें प्यार करेगा। हमने तो सोचा था बड़ा डांटेगा, दंड देगा, धर्मराज है ना, पाप किए हैं, ये करेगा वो करेगा। और जब वो आया तो क्या देखा, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उस प्यार में भी तो आत्माएं कुर्बान हो रही है ना, उस प्यार में आत्माएं अपने जो विष है ना, विष सागर, जिसे सागर इसलिए तो कहा संसार को, ये 500 विकारों का विष आत्माएं खत्म कर देती है ना उस प्यार में। तो उसके प्यार में मगन रहने के लिए ये संकल्प बहुत अच्छा है कि वो हमें बहुत प्यार करता है। ऊपर को देखो, प्यार की दृष्टि दे रहा है बाबा, उसकी दृष्टि से जो वाइब्रेशन फैल रहे हैं उसमें ही अति अति प्यार है। प्यार के सागर की तो कोई तुलना भी नहीं हो सकती। अब लास्ट पद पर आ जाएं, कर्म योगी बनने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना आवश्यक है। यद्यपि ये भी सत्य है कि योग से ही हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। आंखों का रस, कानों का रस, जीभ का रस, मुख का रस, सांसारिक जो सुख साधन है इनका रस आत्मा को बांधे रखता है, नीचे रखता है। ऊपर चलना है अपनी कॉन्शियसनेस को, जिसे मनोविज्ञान के तहत सुपर कॉन्शियसनेस बनानी है, ऊपर रहना है, स्मृतियों को ऊपर रखना है। तो ज्ञान के बल से हम इन कर्मेंद्रियों के रसों को धीरे धीरे हल्का करते करते इन पर विजयी बन जाए। मैं आपको एक बाबा की बहुत सुंदर बात याद दिला दूं, जो रोज मुरली सुनते हैं उन्हें तो तुरंत याद आ जाएगी। क्या था, अभी कुछ मास की बात है, साकार मुरली में मैं इस जन्म में आता हूँ तो इसे वाइब्रेशन देकर इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर देता हूँ। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा सुप्रीम पावर बाबा के तन में आई ब्रह्मा बाबा के, और यहाँ बैठते उसके वाइब्रेशन फैलने लगे होंगे ना, हम वैसे भी समझ सकते हैं सारे शरीर में फैलते होंगे, और भगवान के वाइब्रेशन फैले तो अंग अंग शीतल हो जाते हैं। हम भी अभ्यास कर लें, योग भी हो जाएगा ये, और कर्मेंद्रिय जीत बनने का सबसे सुंदर साधन बन जाएगा। मैं परम पवित्र आत्मा प्रकृति के रीत में विराजमान हूँ, मुझसे जो पवित्र किरणें सारे शरीर में फैलती हैं, ब्रेन में और सारे शरीर में, इससे मेरे अंग अंग शीतल हो रहे हैं। इससे ही अंग अंग शीतल होंगे, क्योंकि अंग अंग में जन्म जन्म के विकारों की अग्नि समाई हुई है, हम सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कलयुग के अंत तक आते आते पाप कर्म और विकार, इन सब की अग्नि, अशुद्ध वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी अंग अंग में समा गई है मनुष्य के। तो जो दुख आत्मा में है वो देह में भी समा गया है। हम कर्म इंद्रियों को शीतल करेंगे वाइब्रेशंस देकर, लेकिन ज्ञान के बल से ध्यान दें, जीभ का रस, व्यर्थ सुनने का रस, आंखों से व्यर्थ देखने का रस, और मुख से व्यर्थ बोलने का रस, इन रसों से स्वयं को वैराग्य दिलाएं। आजकल युवा वर्ग के लिए इंटरनेट और टीवी बहुत खतरनाक, घर घर में एटम बम डाल दिया है ना माया ने। इंटरनेट खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, उसके गंदे सीन देखते हैं, फिर कहते हैं कि पवित्रता बहुत कठिन है, मुख को करना हो मीठा मिठाई खिलाकर और खा रहे हो नमकीन चीजें, कैसे हो मुख मिठाई नहीं होता, नमकीन हो गया कैसे होगा भाई मुख मीठा। मुख मीठा करने के लिए तो मिठाई खानी पड़ेगी ना। एक कुमार का मुझे फोन आया, एक हफ्ते पहले की बात है, भाई मुझे पवित्रता में ये कठिनाई हो रही है, क्या करूं। मैंने उसको एक दूध का प्रयोग सिखाया, जो मैं सिखाता रहता हूँ क्लासेस में। कल फोन आया कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया, पर अब मैं आपको बता देता हूँ मेरी समस्या एक ही कारण से थी, मैं टीवी बहुत देखता था। मैंने कहा फिर बनना चाहते हो संपूर्ण पवित्र और देखते हो बहुत टीवी, ये कैसे होगा। कहा बस अब तो मैंने छोड़ दिया, उसी दिन से छोड़ दी थी। तो हम जरा ध्यान दें, हमारी आंखें किस रस के अधीन हैं। बनना है संपूर्ण पवित्र और देख रहे हैं गंदी चीजें, लक्ष्य कैसे मिलेगा। बनाना है मन को निसंकल्प, सुन रहे हैं सारा दिन व्यर्थ बातें, निसंकल्प कैसे होंगे। मनाना है स्वयं को व्यर्थ से मुक्त, बढ़ते हैं गंदी किताबें तो व्यर्थ कैसे समाप्त होगा। तो जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर चलने के लिए हमें इन के बाह्य रस हैं संसार के, जो कलयुग के अंत में अति में आ गए हैं। जब अखबार नहीं छपते थे, जब गंदी किताबें नहीं छपती थी, जब इंटरनेट कंप्यूटर और ये टेलीविजन नहीं थे, तब मनुष्य काफी सुरक्षित भी था। आज मनुष्य को विकारों की गहराई में ले जाने के लिए ये साधन बहुत आ गए हैं घर घर में, और युवा वर्ग इनमें बड़ा रुचि लेता है, अपने को इसके अधीन कर बैठता है। ध्यान दिलाएंगे, जो माताएं अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना चाहती हैं, वो उन्हें अच्छी तरह सिखाएं, संयमित कराएं जीवन को बहुत आवश्यक होगा। अब जो ज्ञान और योग लिए हुए हैं वो ध्यान दें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐसे नहीं हो शक्तिशाली आत्मा भोजन के स्वाद के अधीन हो गई हो तो कैसा लगता होगा बाबा को। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं जीव के अधीन कि ये खाना ही है, खाके भले पछताएं, खाके भले प्रतिज्ञा करेंगे फिर नहीं खाएंगे, बहुत कष्ट हो गया, मारे गए, अब तो शरीर में डायबिटीज बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, छेड़क हो गया, छेड़क है, चलो क्या हो गया, ठीक तो हो गए फिर खा लेते हैं, ये अधीनता नहीं। कम से कम जीव पर कंट्रोल। बचपन में हम एक बात सुना करते थे कि सन्यासी बहुत अच्छा अभ्यास करता था, जलेबी खाने को दी गई, उसने जीव को जलेबी दिखाई और फेंक दी मिट्टी में, बस देख ली ना जीव ने, खाना नहीं है, नहीं तो इसके अधीन हो जाएगी, कल और जलेबी मांगेगी। इनको अच्छी साधना करनी है, हमको इस तरह के त्याग की आवश्यकता है। कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग, बुद्धि के अहम का त्याग, ये सर्वश्रेष्ठ त्याग हैं जो हमें कर्म योगी बनाते हैं। देखने पर भी ध्यान देना है, सुनने पर भी, जीव के स्वाद पर भी, और मुख से हम क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं। अब तो समय आ गया है बाबा की उन बातों को हम फिर से अपने जीवन में लाएं। 50 शब्दों का काम 5 शब्दों में हो जाए, ऐसे बोल पर कंट्रोल हो। ये नहीं 5 शब्दों में जो बात कही जा सकती है उसके लिए हम 50 शब्दों का प्रयोग कर रहे हों, ये व्यर्थ में वाचा की शक्ति को नष्ट करना होगा। ध्यान दें, हम ये हमारे हाथ में है, अपने हाथ में है ना, हम न सुने या व्यर्थ बातें सुनाने वाला आ गया वो तो हमारा फ्रेंड है, उसे हम कहेंगे हमें नहीं सुनना है तो नाराज हो जाएगा, तो वो हमारा फ्रेंड है या और कुछ, जब वो हमारे हमें व्यर्थ बातें सुनाकर हमारे मन को विचलित कर रहा है, कोई यज्ञ की ग्लानी कर रहा है, कोई महान आत्माओं की ग्लानी करे, तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता। हमें ध्यान देना है जिन बातों को सुनने से हमारी भावनाएं विकृत होती हों, यज्ञ के प्रति हमारा प्रेम कम होता हो, यज्ञ की महान आत्माओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण निगेटिव होते हों, ऐसी बातें हमें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी भावनाएं बिगड़ने का नुकसान हमें होगा। सूक्ष्मता से इस बात को जान लें, हमने यदि अपनी भावनाएं बिगाड़ी तो हमारा अपना जीवन शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल फैशन की ओर हम बढ़ जाएंगे। हमें अपनी भावनाओं को बिगाड़ना नहीं है, तो हमें कर्म योगी बनना है। सभी संकल्प करें कर्म का हम पर प्रभाव न हो, बाबा का प्रभाव हम पर छाया रहे, कर्म में हम इतने व्यस्त न हो जाएं कि सब कुछ भूल बैठे, कर्म इतने ज्यादा न हो जाएं कि बाकी कार्यों के लिए समय ही न मिले। बहुतों के साथ ये भी हो गया है, क्योंकि कर्म योगी बनने के लिए हमें कर्मों से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर 5 मिनट 10 मिनट, जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसा समय निकालकर अभ्यास करने की भी बहुत आवश्यकता है। बिना अभ्यास के, जिसे हम तपस्या कहते हैं, बिना तपस्या के हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। हम चाहें कि तपस्या न करें और कर्म का प्रभाव भी हम पर न हो, ऐसा नहीं होगा। तो कर्मेंद्रियों को जीतना है, उससे हमें कर्मयोगी बनना है, और साधना के द्वारा कर्मयोगी बनकर कर्मातीत अवस्था की ओर चलना है। लास्ट बात आप सबको कह दूं, कर्मातीत अवस्था की बहुत गहरी डेफिनेशन बाबा ने दी है। कर्मातीत अवस्था माना कर्म के प्रभाव से मुक्त और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त, दोनों से परे रहने वाली आत्मा ही यहाँ रहते हुए ही कर्मातीत है, यानी कर्म का प्रभाव परिणाम अच्छा बुरा लाभ हानि हार जीत जो हो गए उसका प्रभाव स्थिति पर आ जाए। हार हो गए तो भी कर्मातीत अवस्था का अर्थ है हार का प्रभाव मन पर नहीं, बहुत जीत हो गई बहुत महिमा मिल गई उसका प्रभाव मन पर उस तरह नहीं कि लोगों को दिखाई दे वाह देखो इसको सुनकर ये लोग बहुत खुश हो गए। एक रस सभी प्रभावों से मुक्त रहने वाली आत्मा कर्मातीत होती है। तो हम सभी ध्यान देंगे कर्म करते हुए अच्छे अच्छे अभ्यास माता अभ्यास माता को भूलना नहीं है, एक दूसरे को याद दिलाएंगी माताएं सभी और कल से ही अभ्यास करेंगी तो आने वाले लोग कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं ना बहुत अच्छे आपके पवित्र भोजन का प्रभाव सभी भाषणों से भी सुंदर होगा। आप किचन में भाषण कर सकती हैं तैयार जिसका प्रभाव खाने वालों के मन को बहुत सुंदर पवित्र शुद्ध करने वाला हो जाएगा। ओम शांति। अब सभी एक ही स्थिति में बैठेंगे विश्राम परम धाम में बिल्कुल रिलैक्स शांति धाम में शांति सागर के साथ।